इशिका को बाहर निकालने के लिए उर्वशी, आयशा और नक्श पूरी कोशिश कर रहे थे। नक्श और उर्वशी के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गार्ड्स ने इशिका पर हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन इशिका ने उन सबको धराशायी कर दिया था। उर्वशी और इशिका के बीच बहस हो रही थी। ठीक उसी वक्त उनके बीच अभिमन्यु वहां पर पहुंचा। उसने वहां गार्ड्स की खराब हालत देखी तो उर्वशी और आयशा ने अभिमन्यु को इशिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इशिका को हैरानी तब हुई जब अभिमन्यु ने भी उनका साथ देते हुए ये कहा कि उसे ये सब भरने की क्या जरूरत थी। इशिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है तुमने ये सब करके गलत किया, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर इशिका की कलाई को पकड़ते हुए उसके हाथ पर लगी हल्की सी चोट को छूते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, देखा, इन सब से तुम्हें चोट लग गई है। तुम जानती हो ना कि तुम अनीमिक हो और तुम्हारे लिए खून की हर एक बूंद कीमती है। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाती। अभिमन्यु ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो इशिका की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। अभिमन्यु की बातें सुनकर इशिका का गुस्सा पल में गायब हो गया, तो वहीं उर्वशी और आयशा के दिल पर इस वक्त छुरियां चल रही थीं। अभिमन्यु ने अभी तक इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखा और गुस्से में तेज आवाज में कहा, मिस निवेदिता, अभी के अभी फैमिली डॉक्टर को यहाँ बुलाइए। मिस सिंघानिया के हाथ पर चोट लगी है, उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। निवेदिता जल्दी से गई और डॉक्टर को लेकर आई। जिस तरह से डॉक्टर को बुलाया गया था उससे डॉक्टर भी थोड़ा परेशान था। उसने इशिका की तरफ देखकर जल्दी से पूछा, मिस सिंघानिया, आपको ज्यादा चोट आई है क्या? जल्दी बताइए, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इशिका को इस वक्त थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ आगे किया तो वहां हल्का सा कट लगा हुआ था, जिससे आने वाला खून भी सूख चुका था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, जहां तक मुझे याद है मुझे आने में इतनी देर भी नहीं हुई कि ये चोट अपने आप ठीक हो गई। ट्रीटमेंट कीजिए डॉक्टर, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। डॉक्टर उसके सामने कुछ कह भी नहीं करता था। उसने इशिका की चोट को क्लीन किया और फिर उस पर एक बैंडेज लगा दिया था। अभिमन्यु का इतना नर्म मिजाज उन लोगों ने पहली बार देखा था। वो सब चुपचाप उनको देख रहे थे तो अचानक उर्वशी को होश आया तो वो बौखलाकर बोली, अभिमन्यु, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस लड़की ने क्या किया है? अभिमन्यु ने सख्ती से उर्वशी की तरफ देखकर कहा, मिस सिंघानिया का नेचर काफी सॉफ्ट है और वो बिना वजह कुछ भी नहीं करती है। जरूर आपने ही ऐसा वैसा कुछ किया होगा। उर्वशी जवाब में कुछ नहीं कह पाई, लेकिन आयशा कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने झट से कहा, मैं बताती हूँ चाचू इसने क्या किया था। ये नक्श को परेशान कर रही थी, इसका समझ नहीं आता, कभी आपके पास आती है तो कभी नक्श के पास चली जाती है। हम नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से राजवंश फैमिली का नाम खराब हो, तो बस हम इसे यहाँ से निकालना चाहते थे। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और कहा, रियली? वैसे तो सिक्योरिटी के लिए इस घर के जरूरी एरिया में कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैंने दादी के विला के बाहर भी कुछ कैमराज इंस्टॉल करवाए थे। बोलते हुए अभिमन्यु ने नक्श की तरफ देखकर कहा, चलिए साथ में सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे और पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उससे बात करने के लिए उसके पास गया था, नक्श ने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा। गलती नक्श की ही थी क्योंकि वो पहले इशिका से बात करने के लिए गया था। उर्वशी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अभिमन्यु, ये सब हमने इसलिए करने का सोचा क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी पत्नी यहाँ आ जाएगी। वो एक अनजान लड़की को यहाँ इस तरह तुम्हारी पत्नी बने हुए देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। बस तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए हमने ये सब किया, आयशा ने उसका साथ देते हुए कहा। आप ये सब भले ही दादी के लिए कर रहे हो, लेकिन इशिका इस बात का पूरा फायदा उठा रही है। अभी वो सबके सामने चिल्लाकर कह रही थी कि आप उसके पति हो, वो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो इस घर की मालकिन हो। इशिका भी वहीं पर मौजूद थी। उन लोगों की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। इशिका ने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब मामला बढ़ गया था तब उसने अभिमन्यु को अपना पति बताया था। इशिका ने अपनी सफाई देने के लिए अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु भी उसी को देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे मन ही मन वो इस बात को लेकर खुश था कि उसने सबके सामने अभिमन्यु को अपना पति बताया। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले वसुधा जल्दी से बाहर आई और उन्होंने अभिमन्यु से सख्त आवाज में कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अब जब आ ही गए हो तो बताओ इन सबको कि मेरी बहू तुम्हारी पत्नी है। इशिका को लगा कि अभिमन्यु के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, दादी मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर चलते हैं ना, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। हर किसी को अभिमन्यु के जवाब का इंतजार था, लेकिन इशिका ने पूरी बात को ही मोड़ दिया था। वसुधा ने तुरंत कहा, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, मेरी बहू को ठंड लग रही है, उसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए इसे स्वस्थ रहना जरूरी है। वसुधा ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए बोली, हाँ बहू ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ जहाँ चाहे रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इशिका इतने लोगों के सामने कुछ नहीं कह सकी, बस उसने लाचारी से अपना सिर पकड़ लिया था। चलते हुए इशिका ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखा, उन्होंने आंखों की आंखों में बात की। दोनों के बीच अब एक रिश्ता बन रहा था, लेकिन जब तक दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ जाते तब तक वो अपनी शादी के बारे में बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते थे। उनके जाते ही उर्वशी ने अभिमन्यु से कहा, दादी की उम्र हो रही है, वो लड़की उन्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए और दादी की तरह बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। चाहिए। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। वो इस बारे में उर्वशी से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने रूखे अंदाज में कहा, ये दादी का घर है और यहाँ वही होगा जो वो चाहेगी। आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। बोलते हुए अभिमन्यु ने सभी गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, तुम सबने दादी की गेस्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम में से कोई भी मुझे यहाँ कल दिखना नहीं चाहिए। इतना कहकर अभिमन्यु अंदर जाने लगा। तभी पीछे से वो चिल्लाते हुए बोले, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सर, मिसेस राजवंश ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था, प्लीज हमें काम से मत निकालिए। पृथ्वी भी वहां पहुंच चुका था और सारा तमाशा देखने के बाद उसने सबसे कहा, तुम लोग जानते हो ना कि इस घर का असली मालिक कौन है, फिर भी तुम लोगों ने किसी और की बात मानने की कोशिश की, यहाँ से चले जाओ, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा। उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग वहां से जाने को हुए उससे पहले पृथ्वी ने तेज आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहाँ काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसमें साफ लिखा था कि घर, परिवार और बिजनेस से जुड़ी कोई भी न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। गार्ड्स ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ नक्श, आयशा और उर्वशी ही बचे थे। उनके जाते ही उर्वशी ने आयशा पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे घर से निकालना ही था तो सब कुछ अच्छे से प्लान करती ना, आधी अधूरी बातों के चलते खामखा इतना बड़ा तमाशा लगा दिया तुमने। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, आयशा ने सिर झुकाकर कहा।
आगे कुछ भी कहने से पहले उर्वशी ने नक्श की तरफ देखा, जो अभी भी खोया हुआ था। नक्श का ये हाल देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। वो आयशा से बोली, समझ नहीं आ रहा, उस चुड़ैल ने ना जाने इन पर क्या जादू कर दिया है, जो ये दोनों आदमी और वो बूढ़ी औरत उसी की बात मानते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है और तुम उसे यहाँ से बाहर निकालोगी। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। आयशा अभी भी वहाँ पर खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि अभिमन्यु और वसुधा इशिका को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। आयशा ने नक्श की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, नक्श, मैं अपना ज़रूरी सामान सिंघानिया मेंशन में ही भूल गई हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। नक्श ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर चला गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि आयशा क्यों जा रही है या कहाँ जा रही है। इस बात से आयशा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। आयशा को अब कुछ भी करके इशिका को राजवंश विला से बाहर निकलना था। इसके लिए उसे किसे मोहरा बनाना था, ये वो अच्छे से जानती थी। कुछ ही देर में आयशा सिंघानिया मेंशन पहुंची, जहां आदर्श और राधिका साथ में टीवी देख रहे थे। आयशा को वहां देखकर आदर्श ने कहा, तुम दोनों ने तो शादी कर ली है और तुमने राजवंश विला में शिफ्ट भी कर लिया था, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा ने जवाब देने से पहले राधिका की तरफ देखा, जो उसके यहाँ आने से खुश नहीं थी। राधिका इस बात से नाराज थी कि आयशा ने नक्श से इतनी जल्दी शादी कर ली, वो भी उनके हिसाब से। आयशा ने मासूम का चेहरा बनाया और परेशान स्वर में कहा, मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आई थी। आज मैंने उनके साथ टाइम बिताया तो मुझे पता चला कि वो लोग इशिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इशिका अभी भी उन्हीं के साथ रह रही है। आदर्श ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राधिका इस बात से परेशान हो गई थी। उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है वहां इशिका के साथ? उसका अभिमन्यु राजवंश के साथ रिलेशन बन रहा है, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभिमन्यु और इशिका के बीच। बोलते हुए आयशा जानबूझकर रुक गई। वो जानती थी कि उसे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और राधिका खुद ही समझ जाएगी। ये क्या बकवास कर रही है तुम? इशिका ऐसी लड़की नहीं है, वो बस वहां मिसेज वसुधा राजवंश के लिए वहां पर रुकी हुई है। लोगों को जो कहना है कहने दो, इशिका के लिए आगे से तुम्हारे मुंह से मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, राधिका ने हल्के गुस्से में कहा। राधिका को इशिका पर इतना विश्वास था, ये देखकर आयशा को मन ही मन जलन होने लगी। कभी उन्होंने इतना विश्वास आयशा पर भी नहीं किया था। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास कुछ दिखाने को है। एक फोटो है जिसके अंदर वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब है, आयशा ने तुरंत जवाब दिया। वो पूरे सबूत के साथ आई थी और उसने अपना मोबाइल निकालकर सुबह वाली फोटो राधिका को दिखाई। राधिका को भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो आयशा की बात को झुठला भी नहीं सकती थी। आदर्श ने भी उस तस्वीर को देखा तो वो गुस्से से चिल्ला पड़ा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़की मेरी ही बेटी है, इसकी शादी हो गई फिर वो गैर मर्द के साथ बिस्तर पर क्या कर रही है? आदर्श हमेशा आयशा का साथ देते थे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने नम आंखों से कहा, उसकी वजह से उर्वशी आंटी को लगता है कि मैं भी वैसी ही हूँ। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं इशिका को उस घर से निकाल दूं, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। सुबह सुबह तो उर्वशी आंटी और इशिका के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। बोलते हुए आयशा रुक गई और फिर आगे रोते हुए बोली, उन्होंने कहा कि उसकी माँ भी हमारे घर पर रहती है, तो अब उसकी तरह उसकी बेटी भी राजवंश विला में रहेगी। अगर वो वहां रही तो मैं कभी इज्जत से अपना सिर ऊंचा करके नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इशिका वहां गलत इरादों से नहीं रह रही है, राधिका ने इशिका का पक्ष लेते हुए सख्ती से कहा। आदर्श ने कभी भी इशिका का साथ नहीं दिया, हालांकि वो उसकी खुद की बेटी थी। अभी भी उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, आखिर गलत ही क्या कह रहे हैं वो लोग। तुमने देखा नहीं अभिमन्यु राजवंश कैसे इशिका से चिपका रहता है? पिछली बार उसने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवाया था, सिर्फ इशिका के कहने पर। मुझे लगता है आयशा सही कह रही है और उन दोनों के बीच में रिलेशन है। हमें उस लड़की को अभी रोकना चाहिए, इससे पहले कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। आदर्श का इशिका के लिए ये बर्ताव देखकर राधिका हैरान रह जाती थी। वो हमेशा इशिका के बारे में बुरा ही सोचता था। तभी अचानक राधिका को याद आया कि उस दिन राजवंश विला में इशिका ने ये कहा था कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। हालांकि पूरी बात सुनने से पहले ही राधिका बेहोश हो गई थी, पर उसे वो शब्द अच्छे से याद थे। राधिका ने शक भरी निगाहों से आदर्श की तरफ देखकर कहा, आदर्श, क्या इशिका तुम्हारी बेटी नहीं है? राधिका के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर आदर्श हैरान रह गया। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जो राधिका से छुपे हुए नहीं थे। उसने सिर हिलाकर सख्ती से कहा, तो सच में इशिका तुम्हारी बेटी नहीं है? राधिका के अचानक ये सवाल पूछने पर आदर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी हो।